महाभारत की इन कथाओं में है। अब तक हम सुन चुके हैं कि कैसे पांडवों को जलाने का प्रयास किया गया, युधिष्ठिर इत्यादि सभी भाइयों को उनकी माता के समेत दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा, एक महल बनवाया जो ऐसे पदार्थों से बना था जो बहुत जल्दी अग्नि पकड़ने वाले थे, ज्वलनशील पदार्थ, ताकि अगर एक जरा सी भी अग्नि कहीं पर लगाई जाए तो सारा महल जलकर खाक हो जाए। और उस सारे महल में एक ही दरवाजा था, कोई और दरवाजा बाहर निकलने के लिए नहीं था। तो ये बहुत अच्छी योजना बनाई थी, लेकिन विदुर जी के कारण पांडव बचकर निकल गए। ये चर्चा हम लोग पिछली बार कर चुके हैं। अब देखिए पांडवों के जीवन को, छोटे से थे, पिता नहीं रहे, हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन के द्वेष का सामना करना पड़ा। अब बड़े हुए, दक्ष हुए तो अग्नि में जलाकर मारने का प्रयास किया गया। कभी कभी प्रश्न ये आता है कि भक्तों के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं। ठीक है, बाहर अगर किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में कष्ट आए जो बहुत पापी है, जो अधर्म का मार्ग लेता है, तो ठीक है, माना जा सकता है कि उसके पाप के अनुसार, उसके अधर्म के कर्म के अनुसार उसके जीवन में कष्ट आ रहे हैं। लेकिन भक्तों के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? भक्त तो भगवान को भक्ति करते हैं, भगवान को समर्पित हैं, भक्तों को तो कोई अधर्म नहीं छूता। और वो भी किन भक्तों की बात हम लोग कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, कुंती महारानी, ये ऐसे महान भक्त हैं जो भगवान के नित्य संगियों में से माने जाते हैं, बड़े निकट हैं भगवान के, भगवान का विशेष प्रेम है इनसे। तो ऐसे भक्तों के ऊपर जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? क्या सिखलाना चाहते हैं भगवान? क्या भगवान ये हमें सिखला रहे हैं कि भक्ति नहीं करनी चाहिए? क्योंकि देखिए पांडवों ने भक्ति की, कृष्ण के भक्त हैं, और क्या मिला उन्हें? इससे तो अच्छा दुर्योधन है, बचपन से घर में रहा, महल में पला और राज्य को उसने भोगा, जब तक जीवित रहा राजा रहा। एक दृष्टि से अगर देखा जाए, भौतिक दृष्टि से, तो जब तक जीवित था राजा था, आदेश दे रहा था, जिस समय उसकी जंघा को तोड़ दिया था भीम ने, गिरा हुआ था, मरणावस्था में था, उस समय भी उसने आदेश दिया, अश्वत्थामा को तिलक किया, जाओ आज से तुम्हें, आज मैं तुम्हें प्रमुख सेनापति बनाता हूं, खत्म करो पांडवों को, मार डालो पांडवों को। तो जीवन के अंत तक राजा रहा, महल में रहा, ऐश्वर्य में रहा, किसी ने जलाने का प्रयास नहीं किया, विष नहीं दिया किसी ने, कोई विरोध नहीं किया, पिता ने सहयोग किया, मामा ने सहयोग किया, मित्रों ने सहयोग किया, भाइयों ने सहयोग किया। तो एक दृष्टि से तो ये लगता है कि अच्छा है हम भक्ति ना करें, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से जब इतने कष्ट सहने पड़ते हैं तो भक्ति का क्या लाभ है? तो ये जानना चाहिए कि भगवान भक्तों के जीवन में कष्ट क्यों देते हैं। पहला कारण, भक्तों की भक्ति को या उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए। और इसका वर्णन स्वयं कुंती महारानी करती है। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 8वें अध्याय में कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, और उन प्रार्थनाओं में वो एक प्रार्थना करती हैं, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत सभायाम। वो कहते हैं उन सारे कष्टों को याद करती हैं जो उनके जीवन में आए, विष, विषान, महाग्नि, महाअग्नि लगाई थी, जलाने का प्रयास किया, विष देने का प्रयास किया, विषान महाग्नि, पुरुषाद दर्शनात, असत सभायाम, असत सभा अर्थात द्रौपदी को सभा में, बीच सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। तो कुंती महारानी कहती, इतने सारे कष्ट आए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, हे कृष्ण, ये कष्ट मेरे ऊपर बारंबार आए, फिर से आए ये कष्ट, अभी जीवन में आकर चले गए हैं, इतना बड़ा युद्ध हो गया, ये जब युद्ध हो गया था, समाप्त हो गया था, उसके बाद की प्रार्थना है, इतना विशाल युद्ध हो गया, कितना कष्ट हुआ मुझे जीवन में, लेकिन प्रार्थना है इन कष्टों को बारंबार दीजिए। क्यों? क्योंकि इन कष्टों में आपका स्मरण बहुत बढ़ गया था, मैं आपको पुकार रही थी तीव्रता से, रक्षा कीजिए। तो इसीलिए पहला कारण भक्तों के जीवन में भगवान कष्ट देते हैं, ये दिखलाने के लिए कि कैसे, उनका प्रेम बढ़ाने के लिए, उनका प्रेम बढ़ जाता है कष्टों में, तो कुंती महारानी इसको कहती है। दूसरा कारण भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं, भगवान ये दिखलाना चाहते हैं कि देखो मेरा भक्त कितना महान है, दुखों में, कष्टों में कभी मुझे त्यागता नहीं है, मेरी निंदा नहीं करता, मुझ पर आरोप नहीं लगाता, जिसका उदाहरण बलि महाराज। बलि महाराज अपना सब कुछ दे चुके हैं, धोखे से ले लिया भगवान ने, तीन पग भूमि मांगी, सारा ब्रह्मांड ले लिया, बलि महाराज ने निंदा नहीं की, और उस सब के बाद भी बंदी बना लिया राजा को, उसके मंत्रियों के सामने, उसके सैनिकों के सामने, उसकी प्रजा के सामने बंदी बना लिया भगवान ने, बांध दिया, बंधे हुए खड़े हैं, भगवान बैठे हैं सिंहासन पर, और ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि अरे बलि ने आपको सब कुछ दे दिया, आप तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई आपको पत्र दे दे, पुष्प दे दे, फल दे दे, आप प्रसन्न हो जाते हैं, यहां बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया, फिर आपने बंदी क्यों बनाया? और भगवान ने बताया बलि महाराज का गुणगान कराने के लिए, ये दिखलाने के लिए कि देखो कितना महान मेरा भक्त है, कष्टों में भी कभी मुझे त्यागता नहीं। तो ये दूसरा कारण कि भगवान दिखलाना चाहते हैं अपने भक्त की महानता, अपने भक्त का गुणगान कराना चाहते हैं, इसीलिए उसे कष्ट में डालते हैं। तो सच्चा भक्त कौन है? सच्चा भक्त वो नहीं है जो कष्टों में भगवान को त्याग दे, या कष्टों में भगवान पर निंदा करे, भगवान पर आरोप लगाए। सच्चा भक्त वो है जो कष्टों में अपना प्रेम बढ़ाए भगवान के प्रति। सच्चा भक्त वो है जो हर कष्ट में, हर अवस्था में भगवान को धन्यवाद दे। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजाने वात्मकृतम विपाकम हृदवाग वपुर भी विदधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। जो व्यक्ति हर अवस्था में भगवान से कहता है तत्ते अनुकंपा, ये आपकी अनुकंपा है, ये आपकी कृपा है, हर अवस्था में, हर स्थिति में भगवान के हाथ को देखता है, उनकी कृपा को देखता है, मुक्ति पदे सदाय भाग, वो व्यक्ति मुक्ति पद के लायक है, वो व्यक्ति भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लायक है। तो इसीलिए भगवान जीवन में कष्ट देते हैं। तीसरा कारण भगवान जीवन में भक्तों के कष्ट देते हैं, अन्य लोगों को एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कि जब आपके जीवन में कष्ट आए तो आपको कैसे आचरण करना चाहिए। तो एक अन्य लोगों को जो भक्त नहीं हैं, उनको कैसे आचरण करना चाहिए कष्टों में, दुखों में, इसको समझाने के लिए भगवान भक्तों को कष्ट देते हैं जीवन में। तो हम लोग देखते हैं, अरे जब पांडवों के जीवन में कष्ट आए तो पांडवों ने क्या किया, हाँ हमें भी यही करना है। तो एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए समाज में अन्य लोगों के समक्ष वो भक्तों के जीवन में कष्ट देते हैं। और कभी कभी भगवान भक्तों के जीवन में कष्ट देते हैं कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य कराने के लिए, जैसे परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज इतने महान भक्त हैं भगवान के, मरा हुआ सांप डाल देते हैं एक ऋषि मुनि के, श्राप मिल जाता है, 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। तो क्या उद्देश्य था इसमें भगवान का? क्या परीक्षित महाराज का गुणगान? नहीं। क्या अन्यों को उदाहरण? नहीं, मूल कारण वो नहीं था, वो भी था लेकिन मूल नहीं था। तो फिर क्या कारण था? श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य, ये मूल कारण था। तो इसीलिए कभी कभी भगवान भक्तों के जीवन में कष्ट देते हैं किसी बहुत महान महत्वपूर्ण कार्य को कराने के लिए। तो लगता है कि भक्त बहुत कष्ट में है, लेकिन फिर उससे प्रकट जो होता है वो महत्वपूर्ण कार्य। जैसे परीक्षित महाराज, ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनको इतना बड़ा श्राप मिला, जीवन उनका ले लिया गया 7 दिन के अंदर, लेकिन नहीं, भागवत को प्रकट होना था, श्रीमद् भागवत वो सुनाना चाहते थे भगवान। तो इन कारणों से भगवान जीवन में कष्ट देते हैं, ये प्रमुख कारण है। और अन्य कई कारण हैं। जैसे एक कारण क्यों भगवान कष्ट देते हैं, ताकि भक्त इस जगत में रहने की कामना नहीं करें। अगर भगवान कष्ट नहीं दें तो हम कभी इस जगत को छोड़कर जाने का प्रयास ही नहीं करेंगे, और फिर कभी भगवान के धाम उस शाश्वत जीवन में जहां कोई रोग नहीं है, कष्ट नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनसे दूर है, हम कभी जा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए भी भगवान कष्ट देते हैं ताकि भक्त जान जाए कि ये जगत ये उसका घर नहीं है, ये उसका स्थान नहीं है, उसका स्थान कहीं और है, आनंद कहीं और है, प्रेम कहीं और है, शाश्वत जीवन कहीं और है। और इन कारणों से भगवान भक्त के जीवन में कष्ट लाते हैं। तो इसीलिए जब कष्ट आए तो हमें हमारा प्रेम भगवान के लिए बढ़ाना चाहिए, हमारी आसक्ति भगवान से बढ़ानी चाहिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए भगवान को कि अच्छा हुआ आपने कष्ट दिए, आपका स्मरण हुआ, अगर सुखी रहता तो स्मरण नहीं होता। इसीलिए कहावत है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। जब व्यक्ति के पास दुख होता है, परिवार में, समाज में, जीवन में, भाग कर आते भगवान के पास, बचाइए बचाइए। जब सुखी होता है व्यक्ति, भगवान बहुत कुछ दे देते हैं, धन दे देते हैं, संपत्ति दे देते हैं, मान सम्मान दे देते हैं, समय नहीं है मंदिर आने के लिए, तब तब स्मरण नहीं होता भगवान का। तो इसी कारण से पांडवों के जीवन में भी कष्ट आए। और अब पांडव, पिछली बार हमने सुना था कि हिडिंबा, जो हिडिंब की बहन थी, किस प्रकार भीम के प्रति आसक्त हो गई और भीम से उन्होंने विवाह किया, कुंती महारानी की अनुमति से, युधिष्ठिर महाराज की अनुमति से, और फिर एक पुत्र उत्पन्न हुआ घटोत्कच। ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं, इतना हो चुका है, घटोत्कच का जन्म हो चुका है, हाँ या ना? किसी को याद नहीं? हो गया ना? ओके, वही बता दीजिए, क्योंकि दोबारा जन्म हुआ तो तकलीफ हो जाएगी, जन्म एक ही बार हुआ था उसका। तो अब वो लोग आगे बढ़े, घटोत्कच भी चले गए, घटोत्कच ने वचन दिया कि जब भी आपको आवश्यकता होगी आप मेरा स्मरण कीजिएगा, मैं आऊंगा। और हम पिछली बार बता रहे थे कि घटोत्कच को भगवान ने किस लिए प्रकट किया, अर्जुन को बचाने के लिए। तो कहां से भगवान कब से योजना करते हैं, देखिए आज से नहीं, इसी तरह हमारे जीवन में भी उन्होंने योजना की है, पता नहीं कब से, लेकिन की किसी न किसी तरह ये मेरे पास आए। तो अब पांडव आगे बढ़े, व्यास देव मिले उन्हें। व्यास देव ने उनसे कहा कि पास में ही एक चक्र ग्राम है, एक चक्र गांव है, वहां पर रहो, ये बहुत अच्छा गांव है, यहीं आराम से रहो। और स्वयं व्यास देव उन्हें एक ब्राह्मण के घर ले गए और उस ब्राह्मण से कहा कि ये आपके यहाँ थोड़े समय, ये भी ब्राह्मण है, दरअसल उस समय उन्होंने ब्राह्मणों का वेश धर लिया था। तो वे पांचों अपनी माता के साथ उस ब्राह्मण के घर में रहने लगे, एक चक्र ग्राम में। बहुत समय बीत गया, वे लोग रोज जाते, भिक्षा मांग कर ले आते, जो भी मिलता उसी को खाते। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौरताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। एक समय ऐसा हुआ कि सारे जो अन्य चार भाई थे भीम को छोड़कर, वे लोग भिक्षा मांगने गए हुए थे, केवल कुंती महारानी और भीम घर में थे। तो अचानक उन्होंने सुना कि जिस ब्राह्मण के घर में रह रहे हैं वो बहुत विलाप कर रहा है। तो कुंती महारानी से रहा नहीं गया, क्योंकि उनके घर में रह रही थी, उन्होंने इतना स्वागत किया था, इतना अच्छी तरह से उनका आवभगत की थी, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं जाकर देखूं। तो कुंती महारानी सुनने लगी, तो जाकर उन्होंने सुना कि ब्राह्मण रो रहा था। ब्राह्मण कह रहा था कि अरे मेरा छोटा सा पुत्र है, ये एक मेरी पुत्री है, तुम मेरी पत्नी हो, अपनी पत्नी से कह रहा था, तुम्हारे पिता ने मुझे सौंपा है, मेरा कर्तव्य है तुम्हारी रक्षा करना, तो इसीलिए मुझे ही जाना होगा, मेरी ही मृत्यु होगी, लेकिन मुझे पता नहीं उसके बाद तुम लोगों की कौन रक्षा करेगा। तो पत्नी कहने लगी, आप चिंता नहीं कीजिए, अगर आप चले गए, आपको कुछ हुआ, तो मैं इन दोनों बच्चों को संभाल नहीं पाऊंगी, इसलिए आप यहीं रहिए, मैं जाऊंगी, आप इन दोनों बच्चों को संभाल लीजिएगा। इतने में जो छोटी लड़की थी वो कहने लगी, आप लोग दोनों चिंता मत कीजिए, आगे चलकर तो वैसे भी आप मुझे त्यागने वाले हैं, अर्थात मुझे कहीं और भेजने वाले हैं, तो फिर आज ही त्याग दीजिए, मैं आज ही चली जाती हूँ, मैं मर जाऊंगी तो कोई चिंता नहीं है, आपके लिए ये पुत्र रहेगा। और फिर सब रोने लगे। महाभारत में वर्णन है कि वो जो छोटा सा बालक था वो बोल भी नहीं पाता था, तोतली बोली में बोलता था, तो अपनी तोतली बोली में बोलने लगा अपने माता पिता को, रो नहीं रो नहीं। और उसने एक घास का तिनका उठाया और कहा, इससे मैं उस राक्षस को मार दूंगा। तो बेचारे बहुत दुखी थे, लेकिन बच्चे की ये बात सुनकर उनको बहुत साहस आ गया। तो जब ये सब चल रहा था तो कुंती महारानी ने आकर पूछा कि क्या हुआ है, क्या बात है, आप लोग क्यों इतने दुखी हैं। तो ब्राह्मण ने बताया कि दरअसल हमारे इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा राक्षस है, बकासुर या बक, तो वो बहुत शक्तिशाली है, वो हम सबकी रक्षा करता है, कोई भी हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, कोई विपदा नहीं आती, वो हमारी रक्षा करता है, लेकिन इस रक्षा के बदले हमें उसे एक पूरी बैलगाड़ी भरकर भोजन और दो भैंस और एक मनुष्य भेजना होता है खाने के लिए, ये उसका डेली का लंच था, तो ये रोज हमें भेजना होता है। तो हर घर से एक एक व्यक्ति को भेजा जाता है, कई महीनों बाद, कई सालों बाद एक का नंबर आता है, क्योंकि बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़े स्थान हैं, एक 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 ऐसे जाते हैं। तो आज हमारी बारी है, हमारे घर से किसी एक मनुष्य को जाना है, तो इसलिए हम लोग चिंता में हैं, हम क्या करें। तो जब कुंती महारानी ने सुना तो उन्होंने कहा, अरे आप चिंता मत करो, बस इतनी सी बात है, आप चिंता नहीं करो, आपने हमें इतना अच्छा यहाँ पर हमें स्थान दिया है, आप में से कोई नहीं जाएगा, मेरा पुत्र जाएगा। तो ब्राह्मण ने कहा, नहीं ये नहीं हो सकता, आप तो हमारे अतिथि हैं, अगर मैंने अतिथि को मृत्यु के समक्ष भेज दिए और खुद मैं बच गया मृत्यु से, अपने को बचाने के लिए अगर अतिथि को मैं मार दूं तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा, तो ये मैं कार्य नहीं कर सकता हूँ। आप मेरे अतिथि हैं, आप यहीं रहिए, आप ब्राह्मण भी हैं और मुझे ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा, लेकिन अगर मैं खुद जाऊंगा तो मुझे आत्महत्या का पाप लगेगा। तो आत्महत्या ब्राह्मण हत्या से अच्छा है, मैं आपको ब्राह्मण हत्या, आपको भेजकर ब्राह्मण की हत्या नहीं करूंगा, ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लूंगा। तो कुंती महारानी ने समझाया कि देखो मेरा जो पुत्र है वो बहुत शक्तिशाली है, तो कुछ नहीं होगा, और वैसे भी हमारा कर्तव्य है, हम आपके यहाँ रह रहे हैं, चिंता नहीं करो, मेरा जो पुत्र है, अब वो बोल तो सकती नहीं थी कि वो भीम है, 10,000 हाथियों का बल है, चिंता मत करो। तो वो कहने लगी मेरा जो पुत्र है उसको मंत्र की शक्ति है, लेकिन देखो किसी को बताना नहीं। और क्यों नहीं बताना? क्योंकि सब लोग आकर फिर वो मंत्र पूछेंगे मेरे पुत्र से, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए उसके पास मंत्र की शक्ति है जिससे वो राक्षस को मार सकता, तो आज रात को वही जाएगा। तो जब ब्राह्मण ने यह सुना तो विश्वास हो गया, क्योंकि ब्राह्मणों को मंत्रों की शक्ति पर बहुत विश्वास होता। देखिए कुंती जानती थी, अगर कुछ और कहती कुंती, नहीं नहीं उसमें बहुत बल है, ब्राह्मण कहते कोई चीज बैठे रहो, लेकिन ब्राह्मण जानते हाँ मंत्र में बड़ी शक्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि ये मंत्र की शक्ति है इसके पास, तो ब्राह्मण को विश्वास भी हो गया, क्योंकि ब्राह्मणों के पास ऐसे मंत्र हुआ करते थे। तो उसने कहा ठीक है, तो आप उसको भेज दीजिए। तो कुंती महारानी वापस आई भीम के पास, तो भीम से पूछा, भीम बैठे थे, तो उन्होंने कहा देखो ऐसा ऐसा है, एक राक्षस यहाँ तंग कर रहा है, आज तुम्हें लेकर जाना पड़ेगा खाना उसके पास। भीम तो क्या बोलते, भावा विभोर हो गए एकदम कि एक तो उन्होंने पहले सुना एक बैलगाड़ी भरकर भोजन। देखिए अब तक क्या होता था, ये लोग भिक्षा मांगने जाते थे, जो भिक्षा मिलती थी वापस लाते थे, कुंती को देते थे, और कुंती उसका विभाजन करके सबको देती थी। तो जो भी आता था उसके दो भाग करती थी कुंती, एक भाग पूरा भीम के लिए, और एक भाग में से फिर पांच भाग कर ये लोग पांचों खाते थे, चार पुत्र और कुंती। लेकिन अब आप सोच लीजिए बेचारे भीम का कैसे पेट भरता होगा, उसमें भिक्षा मांग मांग के कितना मिलेगा। और अब भीम ने सुना कि वाह एक गाड़ी भरकर छकड़ा, पूरी बैलगाड़ी, और फिर थोड़ा युद्ध भी हो जाएगा। क्या होते क्षत्रियों को जब तक प्रैक्टिस नहीं हो ना, इसीलिए हमारे सेना के जो जवान होते हैं उनको रोज प्रैक्टिस कराई जाती है, नहीं तो वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो युद्ध कैसे करेंगे। तो इसी तरह क्षत्रिय थे, अब इतने दिन से ब्राह्मण बन के रह रहे भीम, अब कहीं तो कुछ कर, और लड़े किससे भीम, भाइयों से तो लड़ नहीं सकता, ब्राह्मणों से क्या लड़ेगा। तो इसीलिए अब उसको वो भी अवसर था, तो बहुत प्रसन्न। तो युधिष्ठिर इत्यादि वापस आए भिक्षा मांगकर, तो युधिष्ठिर ने देखा भीम का चेहरा बड़ा खिला हुआ है तो युधिष्ठिर ने कुछ समझ गए कुछ गड़बड़ है, ये भीम इतना प्रसन्न है आज तो कुछ तो होने वाला। उन्होंने माता को बुलाया, कुंती मतलब क्या बात है भीम इतना प्रसन्न क्यों है? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा ऐसा हुआ, कोई राक्षस है। तो युधिष्ठिर ने कहा अरे आप अपने पुत्र को कैसे किसी दूसरे के लिए मरवा सकते हो, मृत्यु के मुख में भेज रहे हो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, एक ब्राह्मण के लिए, आप जानते नहीं हो। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे अरे भीम के बल के आधार पर हम लोग जीवित हैं, कि आगे चलकर जब युद्ध होगा तो भीम के बल पर हम लोग जीतेंगे, दुर्योधन को यही मारेगा, और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा। तो इतना सब हम लोग उन पर आश्रित हैं और आप ऐसे ही उसे जाने दे रहे हैं। तो कुंती महारानी ने कहा चिंता नहीं करो, क्या तुम भूल गए कि भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल है, और फिर अभी अभी हिडिंब राक्षस को मारते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको, और उससे पहले भी भीम ने बहुत ऐसे कार्य किए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि भीम को कुछ नहीं होगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है आपकी इच्छा है तो भेज दीजिए। तो रात्रि के समय भीम को दिया गया पूरा एक बैलगाड़ी भरकर भोजन, और वो भी बढ़िया बढ़िया पकवान, और भीम चले गए। और भीम वहां गए जहां जाना था, उस स्थान पर उन्होंने जोर से आवाज लगाई उसको, बकासुर को, और उसके बाद बैठ गए और खाने लगे पहले तो आवाज लगा दी और बैठकर खा रहे, महाभारत में बड़ा बहुत सुंदर वर्णन है। तो बकासुर आया गुस्से में और उसने देखा कि अरे कौन व्यक्ति है, एक तो मुझे बुलाकर और मेरा ही भोजन खा रहा है। तो बहुत जोर से चिल्लाया मैं बकासुर हूं, तुम्हारा नाश कर दूंगा। महाभारत वर्णन करते भीम ने मुड़कर भी नहीं देखा देखा भी नहीं कौन आ रहा, भीम अपने खाते रहे। तो बकासुर पीछे आ गया और जब देखा कि ये नहीं घूम रहा है तो जोर से अपने दोनों हाथों से भीम की पीठ पर प्रहार किया, बहुत जोर से, पूरी शक्ति से। उस समय भी भीम ने पीछे घूम के भी नहीं देखा, भीम अपना खा रहे हैं मजे में, क्योंकि उनको खाने मिल गया, अब उनको और कोई चिंता नहीं है। ओ, राक्षस को बड़ा आश्चर्य हुआ। आप सोचिए, वो बहुत महान राक्षस है, बड़ा व्यक्ति, और उसने इतनी जोर से मारा और भीम ने पीछे घूमकर देखा भी नहीं कि कौन आया, अपमान हो गया उसका। दरअसल कभी किसी का अपमान करना हो तो उसकी ओर ध्यान नहीं देना ही सबसे बड़ा अपमान है। मान लीजिए कोई आपकी तरफ आया, आपसे बात कर रहा है, आप ध्यान भी नहीं दे उसकी तरफ, तो उसका अपमान हो जाता है, वो व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। आप दो शब्द बोल लो सहन कर लेगा। तो बकासुर को बड़ा गुस्सा आया कि अरे ये व्यक्ति एक तो खा रहा है ऊपर से। तो फिर उसने, अब बकासुर ने कहा कि अब तो इसको हथियार से मारना होगा, तो एक अस्त्र शस्त्र निकाले। तो उस समय तक भीम काफ़ी खा चुके थे ऑलमोस्ट, तो भीम ने थोड़ा गए हाथ वाथ धोए अपने और फिर आए, हाँ अब बताओ क्या बात है। और फिर उन्होंने युद्ध शुरू किया। थोड़ी देर युद्ध हुआ लेकिन भीम ज़्यादा युद्ध करना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, उसको गिराया, पीठ पर चढ़े और अपना एक ये जो कोहनी, ये जो एक घुटना था वो उनकी पीठ पर रख दिया और दोनों हाथ ऐसे किए, एक हाथ से उनकी गर्दन पकड़ी, एक हाथ से उनकी कमर, और ऐसे उठा दिया दोनों बीच से और उनकी जो कमर थी वो टूट गई। चर चर चर, व्यक्ति को अगर आप देखिए ऐसे उठा दे बीच से तो जो बीच का भाग है वो टूट गया, उधर उन्होंने घुटना रखा हुआ था। और बकासुर सब खून की उल्टी करने लगा, मर गया। तो बाकी जो राक्षस थे भाग कर आए, भीम को देखा, अब उन्हें समझ नहीं आया क्या करें, क्योंकि उनका तो लीडर था बकासुर सबसे शक्तिशाली, उसको भीम ने ऐसे ही घुमाकर मार दिया। तो देख रहे हैं तो भीम ने उनकी ओर देखा कि कहा, देखो अगर तुम लोग भी ज़्यादा यहाँ पर तंग करोगे इन लोगों को तो तुम्हारा भी यही हाल करूँगा। तो बेचारे भाग गए वो देखकर। तो भीम ने सोचा कि अब लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि भीम जानते थे कि अगर ये बात फैल गई कि किसी एक व्यक्ति ने बकासुर को ऐसे मारा है तो दुर्योधन तक पहुँच जाएगी कि ये भीम ही हो सकता है और कोई नहीं। तो इसीलिए जल्दी से उसने गांव के, जहाँ पे गांव शुरू होता था वहाँ रख दिया और फिर चुपचाप चले गए। और फिर ब्राह्मण को जाके ये बताया कि देखो किसी से कहना नहीं। तो अगले दिन जब लोगों ने देखा, अरे बकासुर मारा गया, मर गए, ये क्या हुआ, तो अब सब ढूंढने लगे किसने मारा किसने मारा। तो अब ढूंढते ढूंढते बात आई, कल कौन जाने वाला था, किसकी बारी थी, बस चलो वो ब्राह्मण की। तो सब उसके घर में आए कि भाई क्या हुआ, कौन गया था, तुम में से किसने मारा। तो ब्राह्मण पहले से तैयार था, उसने कहा नहीं, हम में से किसी ने नहीं मारा, दरअसल एक ब्राह्मण आए थे कल, तो मैंने उनको बताया ऐसी ऐसी बात। तो उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, मेरे पास मंत्र है, मैं मंत्र से उसे मार दूंगा। तो वो चले गए थे लेकर और उन्होंने ही मारा होगा, मैं नहीं, हमने नहीं मारा। तो खैर सबने स्वीकार किया और ऐसे बकासुर का वध कर दिया भीम ने। अब जब बकासुर का वध हो गया, कुछ समय बाद एक पुरोहित आए और वो बहुत सुंदर सुंदर कथाएं सुनाने लगे, जगत में क्या हो रहा है, मैं यहाँ गया था, यहाँ ये हो रहा है। कहते कहते उन्होंने द्रौपदी का वर्णन किया और उन्होंने कहा, अब ये तो नहीं जानते थे कि ये पांडव है, तो वो सुना रहे थे कथा ब्राह्मण समझकर। तो उन्होंने कहा द्रौपदी, तो जैसे ही द्रौपदी का विषय सुना, पांडवों ने कहा कि भाई आप बताइए थोड़ा कौन है द्रौपदी, आप इतना कह रहे हैं उसके बारे में, उसका स्वयंवर हो रहा है कौन। तो उन्होंने बताना शुरू किया, पांडवों को ही बता रहे कि देखो द्रोणाचार्य ये भरद्वाज मुनि के पुत्र हैं और द्रोणाचार्य ये द्रुपद के मित्र थे और द्रुपद से ये सारी कथा हम लोग कर चुके हैं, इसलिए हम लोग विस्तार में नहीं जा रहे, लेकिन ब्राह्मण उनको सुना रहे हैं। तो द्रुपद से मित्रता थी, द्रुपद ने मित्रता त्याग दी और फिर द्रोणाचार्य गए भीष्म के पास और फिर उन्होंने कौरवों को सिखाया और फिर कौरवों का युद्ध हुआ। पांडवों को इसे बता रहे हैं कि कौरव और पांडव गए द्रुपद के पास, कौरव हार कर भाग गए, फिर पांडवों ने उनको जीत लिया, अर्जुन प्रमुख उसमें, अर्जुन ने जीत लिया, अर्जुन को ही बता रहे, अर्जुन ने जीत लिया। तो ये लोग सुन रहे हैं, हाँ हाँ बहुत अच्छी कथा है, बहुत अच्छी कथा है। लेकिन उन्होंने बताया कि जब द्रुपद को छोड़ दिया द्रोणाचार्य ने अपना मित्र बनाकर, तो द्रुपद को प्रसन्नता नहीं हुई, अपमान हो गया था द्रुपद का। तो द्रुपद ने सोचा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो द्रुपद वन में गए, ऋषि मुनियों से मिले और उनमें से एक ऋषि से उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे ऐसा यज्ञ करना है जिससे मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो कई ऋषियों ने मना कर दिया क्योंकि अच्छा कार्य नहीं है ऐसे पुत्र को उत्पन्न करना जो द्रोणाचार्य जैसे महान व्यक्ति का वध करे। फिर एक व्यक्ति मान गए, यज्ञ हुआ और उस यज्ञ के जब पायसम को बनाया गया और इनकी पत्नी को बुलाया कि लो ये पायसम लो, इससे तुम्हें एक बहुत शक्तिशाली पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न होगी, तो उस समय उनकी पत्नी तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी ऐसा है, मैं अभी आ नहीं सकती, ये शुद्ध है, इसको मैं स्पर्श नहीं कर सकती। तो उस समय वो जो ऋषि थे बहुत शक्तिशाली थे, तो उन्होंने कहा मैंने ये पायसम बनाया है, इसको तुम स्पर्श करो या ना करो लेकिन संतान तो उत्पन्न होगी। ऐसा कह के उन्होंने वो पायसम अग्नि में डाल दिया और अग्नि में डालने से फिर उसमें से धृष्टद्युम्न एक पुत्र उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ। ऐसे बताते हैं कि वो हाथ में तलवार लेकर उत्पन्न हुआ था, कानों में कुंडल थे, कवच था, इसीलिए उनका नाम धृष्टद्युम्न हुआ। जो कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ ऐसे वक्त लड़के को धृष्टद्युम्न कहा गया। तो धृष्टद्युम्न हुआ और उसके बाद द्रौपदी प्रकट हुई, इसीलिए द्रौपदी का एक नाम है यज्ञसेनी। यज्ञसेनी मतलब जो यज्ञ से प्रकट हुई हैं। तो ये दोनों प्रकट हुए, द्रौपदी बहुत सुंदर थी। तो उस समय जब द्रुपद महाराज को ये सूचना मिली, अब ये पुरोहित पांडवों को बता रहे हैं कि आप जानते हो दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा और पांचों पांडवों को उनकी माता के साथ जलाकर मार दिया। ये पुरोचन ने किया था लेकिन वो भी मारा गया, उस अग्नि में जल गया, लेकिन क्या करें पांडव भी जल के मर गए। तो जब ये सूचना द्रुपद महाराज को पहुंची तो वो बहुत दुखी हो गए, क्योंकि द्रुपद ने एक प्रण लिया था कि मेरा पुत्र द्रोणाचार्य का वध करेगा और मेरी पुत्री अर्जुन की पत्नी बनेगी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये तो मर गए तो बड़े दुखी हो गए कि मैंने जो वचन लिया था, जिस उद्देश्य से इस पुत्री को प्राप्त किया था, वो पूरा नहीं होगा। मैं चाहता था ये अर्जुन की पटरानी बने, तो बड़े दुखी हो गए। तो उस समय उनके गुरु ने उनसे कहा कि देखो एक बात बताता हूं, जो व्यक्ति सदैव अपने वरिष्ठों का आदर करता है, जो व्यक्ति सदैव धर्म के मार्ग पर चलता है, उसका विनाश नहीं होता। इसलिए जान लो कि अर्जुन मरे नहीं हैं, अर्जुन का नाश नहीं हुआ है, पांडवों का नाश नहीं हुआ है, क्योंकि वे सदैव धर्म पर चलने वाले हैं, अपने वरिष्ठों का आदर करने वाले हैं। तो पांडव जीवित हैं और इसीलिए आप स्वयंवर की रचना कीजिए, द्रौपदी के लिए स्वयंवर कीजिए। और मैं आपको वचन देता हूं कि जहां भी पांडव होंगे, चाहे वो स्वर्ग में हों, पृथ्वी पर हों या फिर नीचे चले गए हों भूतल के, पांडव आएंगे, आप स्वयंवर की रचना कीजिए। तो ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए द्रुपद महाराज और इसीलिए उन्होंने स्वयंवर रचा है। और फिर उस ब्राह्मण ने कुंती से कहा कि हे ब्राह्मणी, वो तो सोच रहे थे ब्राह्मण है, तो हे ब्राह्मणी आप भी अपने इन पुत्रों को लेकर आइए उस यज्ञ में, बहुत अच्छा यज्ञ होगा, बहुत अच्छा स्वयंवर होगा, हम सब भी जा रहे हैं, आपके पुत्र इतने सुंदर हैं, हो सकता है द्रौपदी इनमें से किसी को चुन ले अपने वर के रूप में, तो आप इनको भी लेकर आइए, चलिए हमारे साथ, हम यहीं से जा रहे हैं अभी सब, वहीं पांचाल नरेश में, पांचाल नगरी में। द्रौपदी के कई नाम थे, एक नाम था पांचाली क्योंकि पांचाल नरेश की पुत्री थी, द्रौपदी क्योंकि द्रुपद की पुत्री थी, यज्ञसेनी क्योंकि यज्ञ से प्रकट हुई थी। तो कुंती महारानी ने चर्चा की युधिष्ठिर महाराज से, क्या करना चाहिए, बहुत समय हो गया यहाँ रहते हुए, अब किसी के घर में रहना इतने समय अच्छा नहीं है, तो चलो हम लोग चलते हैं, पांचाल देश हमने देखा भी नहीं है, तो वहाँ घूम भी लेंगे और स्वयंवर भी देख लेंगे। दरअसल कुंती ने इसलिए कहा था क्योंकि जब द्रौपदी का वर्णन हो रहा था तो वो अपने पुत्रों का चेहरा देख रही थी और द्रौपदी का वर्णन सुन के पुत्रों के चेहरे खिल गए थे, तो वो समझ गई कि ये लोग क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा चलो हम स्वयंवर में जाएंगे। तो जब वो लोग जा रहे थे, जाने वाले थे, उससे पहले व्यासदेव आए और व्यासदेव ने उन्हें एक रहस्य बताया। व्यासदेव ने कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इसको बड़े ध्यान से सुनो। पूर्व काल में एक ऋषि की एक पुत्री थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि उसका विवाह नहीं हो पाया। तो जब बहुत समय तक विवाह नहीं हो पाया तो उसने शिवजी से प्रार्थना करनी प्रारंभ की, शिवजी की भक्ति प्रारंभ की, तपस्या की बहुत, और शिवजी प्रसन्न हुए और उसने शिवजी से मांगना प्रारंभ किया। तो उसने शिवजी से मांगा कि मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो बहुत सुंदर हो, मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो बड़ा शक्तिशाली हो, मुझे ऐसा पति चाहिए जो धर्म के मार्ग पर चलता हो। तो ऐसे ऐसे वो मांग रही थी। तो शिवजी ने कहा तथास्तु, तुम्हारे 5 पति होंगे। वो घबरा गई, नहीं नहीं मैंने तो एक ही पति मांगा था। तो शिवजी ने कहा नहीं, तुमने 5 बार मुझसे पति मांगे हैं, मुझे ऐसा पति चाहिए, मुझे ऐसा पति चाहिए, मुझे ऐसा पति चाहिए, तो इसीलिए तुम्हारे 5 पति होंगे। अगले जन्म में तुम द्रौपदी के रूप में जन्म लोगी और तुम्हारे 5 पति होंगे। ऐसा शिवजी ने वरदान दिया। देखिए वरदान मांगने के समय भी हमें थोड़ा संभाल कर मांगना चाहिए। भावा विभोर होकर भगवान के सामने कुछ ज़्यादा मांग दिया और भगवान ने दे दिया तो तकलीफ हो जाएगी। तो द्रौपदी का ये इतिहास व्यासदेव ने बताया। वैसे द्रौपदी का और एक इतिहास है। द्रौपदी को सती स्त्रियों में उसकी गिनती की जाती है। तो द्रौपदी को सती कैसे मान सकते हैं, चेस्ट वाइफ कैसे मान सकते हैं, 5 पति हैं उसके? तो इसका वर्णन श्रीपाद मध्वाचार्य ने बहुत सुंदर तरीके से किया है। अगले सोमवार को जब द्रौपदी के स्वयंवर की बात कहेंगे और उसके बाद उनके विवाह के पूर्व जो घटनाएं हुई उसमें इस बात को समझाएंगे कि कैसे द्रौपदी 5 पतियों के होते हुए भी सती है, इसका वर्णन अगली बार करेंगे। मध्वाचार्य ने अपने महाभारत के तात्पर्यों में इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। और भी इतिहास है द्रौपदी का जिसको व्यासदेव ने जाकर द्रुपद महाराज को बताया था, तो ये भी वर्णन अगली बार करेंगे जब विवाह की बात आएगी। तो इन लोगों ने सुना और फिर अब सब की इच्छा हुई कि हम भी जाएं द्रौपदी के स्वयंवर में, द्रौपदी के पास। तो सब चल दिए। रात्रि का समय था, जंगल से होते हुए अर्जुन आगे आगे हाथ में मशाल लेकर चल रहे हैं। अचानक गंगा के तट पर आए और गंगा के तट पर आए तो वहाँ पर उस समय गंधर्व क्रीड़ा कर रहे थे। गंधर्वों के राजा थे जो क्रीड़ा कर रहे थे, चित्ररथ। तो उन्होंने इनको चुनौती दे दी अर्जुन को, तुम कौन हो, आगे नहीं आना, हिम्मत कैसे हुई इस समय आने की, हमारा समय है इत्यादि, गंगा में प्रवेश नहीं करना। तो अर्जुन को भी क्रोध आ गया। अर्जुन ने कहा साधारण नदियों के लिए नियम होता है, गंगा नदी के लिए नियम नहीं है कि इस समय प्रवेश नहीं कर सकते। समुद्र के लिए, हिमालय के लिए और गंगा के लिए कोई नियम नहीं है, हम कभी भी आ सकते हैं। तो ऐसे जब बातचीत हुई तो जो चित्ररथ थे बड़े गुस्से में आ गए, उन्होंने तीर चला दिया अर्जुन के ऊपर। तो अर्जुन ने कहा कि देखो तुम कोई साधारण मानव नहीं हो, तुम्हारे पास देवों के अस्त्र हैं, इसीलिए मैं भी दिव्यास्त्र का प्रयोग करता हूँ। और उन्होंने बिना धनुष बाण के वो मशाल से ही उन्होंने तीर बनाकर छोड़ा जो आग्नेयास्त्र था, आग्नेयास्त्र यानी अग्नि प्रकट करने वाला। और उस समय उनका जो पूरा रथ था उस गंधर्व का, बहुत सुंदर रथ था, इसलिए उनका एक नाम था चित्ररथ। चित्ररथ यानी बहुत सुंदर रथ है। तो उनका पूरा रथ जलकर राख हो गया और वो भी गिर पड़े, इसीलिए बाद में उनका एक नाम हो गया दग्ध रथ। दग्ध यानी जल गया पूरा रथ, पहले चित्ररथ था फिर दग्ध रथ। तो गंधर्वों को कहा उन्होंने कि युद्ध बंद हो गया, गंधर्व ने शरण ली और उस समय उन्होंने बहुत सारी कथाओं को उन्हें सुनाया पांडवों को। एक कथा को सुनाया, बातचीत करते करते उन्होंने अर्जुन को तप्ती नंदन कहकर संबोधित किया, तापते तप्ती नंदन तप्ती नंदन। तो अर्जुन ने जब ये सुना तो अर्जुन ने कहा आपने मुझे तप्ती नंदन कहकर संबोधित किया, मैं तो अभी तक अपने आप को कुंती नंदन ही मानता था, तो ये तप्ती नंदन आपने क्यों कहा मुझे? तापते तापते जैसे कौनते कहते ना कुंती का पुत्र तापते, तो ये क्या, ये क्यों कहा, मैंने आज तक कभी ये नाम नहीं सुना। तो उन्होंने बहुत सुंदर इतिहास बताया, उन्होंने बताया कि दरअसल तुम्हारे जो पूर्वज हुए कुरु, जिनसे ये वंश आता कुरु वंश कहे जाते हैं, उनकी जो माता थी वो सूर्य की पुत्री थी जिनका नाम था तप्ती, और उनका विवाह तुम्हारे कुल में राजस संवरण से हुआ था। तो राजस संवरण और तप्ती के पुत्र हुए थे कुरु, इसीलिए जैसे सभी पुत्रों को कौरव कहा जाता है, कुरुवंशी कहा जाता है, इसीलिए तप्ती नंदन भी कहा जाता है, ताप्तेय भी कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारी उस समय उन्होंने विश्वामित्र की कथा सुनाई पांडवों को कि किस प्रकार विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि से उनका युद्ध हुआ, ये कथा आप जानते हैं, संक्षेप में आपको बताते हैं। विश्वामित्र अपनी सेना के साथ आए, राजा थे विश्वामित्र, अपनी सेना के साथ आए वशिष्ठ मुनि के पास। वशिष्ठ मुनि ने स्वागत किया और कहा कि क्या आप कुछ भोजन स्वीकार करेंगे? तो राजा ने सोचा ये जंगल में रहने वाला ये ऋषि क्या खिलाएगा मुझे और मेरी सेना को। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तो वशिष्ठ मुनि कहा नहीं नहीं आप भोजन स्वीकार कीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है, अब इस इतना ही कह रहा है तो स्वीकार कर लेते, बुलाओ सब सेना को, बुलाया सबको बिठाया। और उस समय इतना आश्चर्य हो गया विश्वामित्र को कि सबको उन्होंने जो खिलाया, जिसकी जो इच्छा थी मन में खाने की वो भोजन सामने आया। आप सोचिए क्या आनंद आता होगा ना, जैसे अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं और सोच रहे हैं कि क्लास के बाद अगर गुलाब जामुन खाने को मिले और एकदम गुलाब जामुन प्रकट हो जाए, वाह। ऐसा हो रहा था, जो सैनिक जो सोच रहा था उसके सामने वो व्यंजन आ रहे थे और वो खा रहा था, जितना चाहिए। हमारे यहाँ तो कभी कभी दो से ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन जितना चाहिए। तो विश्वामित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने वशिष्ठ से पूछा, भाई तुम तो जंगल में रहने वाले, ये सब क्या है, कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास एक गाय है नंदिनी, तो ये जो गाय है ये बड़ी शक्तिशाली, ये सब उससे ही, उस जरा सा ऐसे उसकी ही शक्ति है। तो विश्वामित्र ने कहा तब तो ये गाय मेरे पास होनी चाहिए, तुम्हारे पास कैसे? जो भी श्रेष्ठ चीज़ है वो राजा के लिए हैं, चलो दो गाय। तो उस समय गाय को खींच के ले जाने लगे, तो नंदिनी वशिष्ठ मुनि से कहने लगी बचाओ मुझे, लेके जा रहे हैं। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा मैं तो ब्राह्मण हूँ, ये राजा है, इतनी शक्ति है इसके अंदर, मैं तो नहीं कर सकता हूँ इससे युद्ध, तुम ही करो कुछ। तो नंदिनी ने स्वयं इतने सारे सैनिकों को प्रकट किया कि इनकी सारी सेना को मार दिया। विश्वामित्र हैरान हो गए कि ये शक्ति। तो फिर उन्होंने वापस आक्रमण किया, तो उस समय वशिष्ठ मुनि ने केवल अपने ब्रह्म दंड से, अपने ब्रह्म ऋषि की शक्ति से उन्होंने उनको हरा दिया। उस समय विश्वामित्र ने कहा मैं संन्यास लेता हूं, सब कुछ छोड़ता हूं, क्योंकि मैंने देख लिया राजा बन के, शक्ति हो के, सेना हो के, धन हो के कोई लाभ नहीं है, ये अकेला जंगल में रहने वाला इसने मुझे हरा दिया, इसलिए अब मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है, मैं भी ब्रह्म ऋषि बनूंगा जैसे ये हैं वशिष्ठ। तो उन्होंने कहा मैं तपस्या करूंगा। तो फिर वो तपस्या के लिए चले गए, बहुत कड़ी तपस्या की कई हजार वर्षों तक। इंद्र ने सोचा भाई ये क्यों तपस्या कर रहे हैं, इंद्र तो नहीं बनना चाहते। तो इंद्र ने एक अप्सरा को भेज दिया, इंद्र का काम ही यही है, मतलब काम यही है, मतलब ऐसे नहीं, आप ये मत सोचिए कि इंद्र यही करते हैं, वैसे बहुत जिम्मेदारी का काम वो करते हैं भगवान के लिए, लेकिन ये उनका साइड बिजनेस कह सकते हैं। हमेशा ध्यान रखते हैं कौन कौन तपस्या कर रहा है, कौन तपस्या कर रहा है, भेजो अप्सराओं को भेजो। तो मेनका को भेज दिया, मैंने कहा आई, विश्वामित्र तपस्या कर रहे हैं, कान में घुंघरू की आवाज, छन छन हरि बोल, समाप्त हो गया सारी तपस्या, समाप्त, विवाह कर लिया बहुत आराम से रहे। बाद में मेनका चली गई, मेनका का काम हो गया, तपस्या नाश। तो जब इनको पता चला, बड़ा गुस्सा, अच्छा इंद्र ने ऐसा किया, फिर से तपस्या करूंगा, मैं तो ब्रह्म ऋषि बनकर रहूंगा। फिर तपस्या करने लगे, अब की बार रंभा को भेजा, इंद्र के पास कमी नहीं है अस्त्रों की, उर्वशी, रंभा, मेनका भरे हुए हैं, जब कोई तपस्या वो भेजते रहते, चल तुम जाओ वहां, तुम जाओ। वैसे ऐसा आज भी होता है, ये नहीं है कि पहले की कथाएं हैं, आज भी अगर कोई तपस्या करने लगता है, कोई ब्रह्मचारी जीवन ले लेता है, बड़ी अच्छी कड़ी तपस्या करता है, ऊपर से देवता देखते हैं, बाकी लोगों को नहीं देखते, क्योंकि बाकी लोग तो वैसे ही मरे हुए हैं, सही है ना। समझ लिया आप युद्ध करने जा रहे हैं, तो आप युद्ध करने के लिए आए और आपके सामने वाला पहले ही गिरा पड़ा है, चारों खाने चित, आप क्या उसको उठाकर मारेंगे, पहले जो माया में है उसको भी कोई नहीं। लेकिन जब कोई संघर्ष करता है वैराग्य के लिए, तपस्या करता है, कड़ी तपस्या, ब्रह्मचारी सन्यासी, तो फिर देवता योजना करते हैं, तो अचानक कुछ कोई आकर्षण सामने आ जाता है, सब ब्रह्मचारी सोचते हैं अच्छा है, जैसे विश्वामित्र ने सोचा चलो विवाह कर लेते हैं, ये भी एक जीवन है। विश्वामित्र तो वापस आ गए, ब्रह्मचारी वापस नहीं आ पाते, वो अलग बात है। तो विश्वामित्र ने फिर से तपस्या की, रंभा को भेजा इस बार इंद्र ने, विश्वामित्र इस बार तो जानते थे कि मुझे कुछ करना नहीं, लेकिन रंभा के ऊपर उन्होंने क्रोध कर दिया, उसको पत्थर बना दिया कि तुम मेरी तपस्या भंग करने आई हो, पत्थर हो जा। लेकिन क्योंकि क्रोध कर दिया, फिर तपस्या नाश हो गई। देखिए व्यक्ति की तपस्या कैसे कैसे नाश हो सकती है, काम से, क्रोध से और लोभ से, ये तीनों से व्यक्ति की तपस्या का नाश होता है। इसीलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतम त्रयम त्यजेत। भगवान कहते तीन चीजें नरक का द्वार हैं, इनको त्याग देना चाहिए। व्यक्ति के हृदय में काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक की ओर ले जाते हैं। तो पहले काम उनके हृदय में आया मेनका को देखकर, तपस्या का नाश। फिर क्रोध आया रंभा को देखकर, रंभा ओ तुम मेरी तपस्या भंग करना चाहती हो, पत्थर हो जाओ, तो क्रोध कर दिया। तो इसीलिए जिस व्यक्ति को तपस्या करनी है, उसको अपने हृदय में इन तीन चीजों से बचना चाहिए, काम से, काम वासनाओं से, क्रोध से और लोभ से। क्योंकि तपस्या का अर्थ ही यही है कि इन तीन चीजों के परे, उसी को तपस्या कहते हैं। आप लोभ करते हुए, सारी चीजों का लोभ लेते हुए क्या तपस्या करोगे, वो तो तपस्या सही तपस्या नहीं है। जैसे रावण की तपस्या, लोभी था, कामी था रावण, क्रोधी था, सारे चीजें रावण में थी, तो इसलिए ये तपस्या नहीं है, उस तपस्या का कोई लाभ नहीं। तपस्या होनी चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, तपस्या होनी चाहिए इन चीजों से दूर जाने के लिए, इनको पाने के लिए नहीं। रावण ने तपस्या की सुंदर स्त्रियों को पाने के लिए, रावण ने तपस्या की धन सोने को पाने के लिए, रावण ने तपस्या की सारे ब्रह्मांड का स्वामी बनने के लिए। ये सही उद्देश्य नहीं है तपस्या का। तपस्या की जाती है भगवान की प्रसन्नता के लिए, तपस्या की जाती है भगवान की प्राप्ति के लिए, तपस्या की जाती है अपने हृदय में बैठे हुए इन शत्रुओं को भगाने के लिए। ये तपस्या का उद्देश्य है कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें, भगवान को प्राप्त कर सकें, अपने अस्तित्व को शुद्ध कर सकें। श्रीमद् भागवत के पांचवें स्कंद में ऋषभ देव इसको कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्या शुद्धम शुद्धेत। वो कहते हैं कि दिव्य तपस्या होनी चाहिए, तपो दिव्यम किसके लिए, सत्ता को शुद्ध करने के लिए, अपने अस्तित्व को शुद्ध करने के लिए, और उस शुद्ध अवस्था में भगवान की भक्ति करने के लिए। ये तपस्या का उद्देश्य है। तो इसलिए हमारी तपस्या किसी अन्य कारण से नहीं होनी चाहिए। इस कलयुग में तो वैसे भी हम लोग तपस्या नहीं कर पाते हैं। आपसे कहा जाए कि एक पांव पर खड़े होकर 2000 साल तक तपस्या करो, कौन कर पाएंगे, है ना? हम तो 2 घंटे नहीं खड़े हो सकते एक पांव पर। कुछ समय पहले हम एक जगह देख रहे थे कि कुछ योगा सिखा रहे थे कहीं पे, तो योगा में वो एक पांव पर खड़े होने के लिए बोल रहे थे और दोनों हाथ ऊपर। हमें सब ऐसा ही लग रहा था कि हिरण्यकश्यप ऐसे ही खड़ा हुआ हुआ होगा, रावण ने ऐसे ही किया होगा, तो तपस्या कर, लेकिन 2 मिनट भी लोग नहीं खड़े हो पा रहे थे। पांव गिर रहा था, फिर दूसरा लगा रहे थे, फिर पकड़ रहे थे। तो इस कलयुग में तपस्या क्या है? ऐसे बताते हैं कि जो सतयुग में लोग हजारों हजारों साल तक जंगल में जाकर बड़े कष्ट में जीवन जीकर तपस्या करते थे, एक पांव पर खड़े होकर सारे हिंसक प्राणियों के बीच में रहकर, जो लाभ उनको मिलता था, कृते यध्यायतो विष्णु, ध्यान करते थे भगवान का, तो जो लाभ उनको मिलता था, या फिर जो लाभ त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से मिलता था। आपने सुना होगा रामायण में जब रामचंद्र जी के जन्म के लिए यज्ञ करने वाले थे तो बहुत बड़ा शहर बसाया गया केवल एक यज्ञ करने के लिए। कुरुक्षेत्र का जो मैदान है ये यज्ञ स्थली है, इस पर यज्ञ हुआ करते थे बड़े बड़े, इसीलिए इतनी बड़ा स्थान रखा गया था यज्ञ के लिए। तो जो लाभ इतने बड़े बड़े विशाल यज्ञों से होता था, आजकल के यज्ञ नहीं, आजकल के यज्ञ तो उन यज्ञों का 1% भी नहीं है। आप सोचिए, हजारों टन घी लगता था यज्ञ में, आज तो 1.25 किलो में घी, छोटा सा पैकेट लाते हैं पंडित, वो इतना सा यज्ञ कुंड होता है जो अपनी झोले में लेकर चलते हैं, बैठते हैं, उसको खुलते हैं, 8-10 लकड़ी डालते हैं, 1.25 किलो घी डालते हैं, वो कुछ मंत्र बोलते हैं जो ना उनको समझ में आता है ना हमको समझ में आता है, यज्ञ समाप्त। ऐसे यज्ञ नहीं थे पहले के, कई कई दिनों तक, कई कई वर्षों तक यज्ञ चलते थे। तो जो लाभ तपस्या से सतयुग में मिलता था, जो लाभ त्रेता युग में यज्ञ करने से मिलता था, और जो लाभ अर्च विग्रह की सेवा करने से द्वापर युग में मिलता था। द्वापर युग में लोग अर्च विग्रह की बहुत सेवा किया करते थे। अभी तो हम लोग भगवान का जो श्रृंगार आदि करते कुछ भी नहीं है, तभी तो भगवान को सोने से, तब प्लास्टिक आया नहीं था, अच्छा अच्छा समय था लोगों के लिए, तो तब तो भगवान को सोने से श्रृंगार होता था बहुत, और नियम थे बड़े कड़े नियम, सुबह से शाम तक भगवान के विग्रह की सेवा करना, वो आज हम लोग पालन नहीं कर सकते हैं कलयुग में। तो इसीलिए कहा गया कलयुग के लिए कि जो लाभ सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, जंगल में जाकर, हिमालय में जाकर करने से मिलता था, जो लाभ त्रेता में यज्ञ करने से मिलता था, जो लाभ द्वापर में भगवान की विग्रह की सेवा करने से मिलता था, वही लाभ इस कलयुग में केवल हरि नाम से मिलता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और यही कलयुग की एक तपस्या है, क्योंकि हम लोग इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, न यज्ञ न तप ध्यान, इसीलिए बड़ा सरल तपस्या दी गई है, इस हरि नाम को लेना। तो अगर हम जीवन भर इस हरि नाम को लेते रहें तो निश्चित इस तपस्या से हमारा हृदय शुद्ध होगा और हम भगवान की प्राप्ति कर सकेंगे। तो अगले सोमवार को चर्चा करेंगे द्रौपदी के स्वयंवर की, बहुत महत्वपूर्ण ये चर्चा है, बहुत सुंदर वर्णन है शास्त्रों में, अलग अलग स्थानों में द्रौपदी के स्वयंवर का वर्णन किया गया है, तो अगले सोमवार को इसको वर्णन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के कोई प्रश्न हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई टीका टिप्पणी, मन में कोई शंका? अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो माइक दीजिए, पीछे दीजिएगा माइक, ये ऑन है, माइक ऑन है कि नहीं चेक कीजिए। हरे कृष्णा। कर्म भक्ति भी होती है। भक्ति का अर्थ है भगवान से जुड़ना। जो मार्ग हम लेते हैं, चाहे ज्ञान का मार्ग लें, कर्म का मार्ग लें, वैराग्य का मार्ग लें या प्रेम का मार्ग लें, तो ज्ञान और कर्म या वैराग्य ये सारे भक्ति के अंग नहीं हैं, लेकिन भक्ति को सहयोग करते हैं। और जहाँ तक प्रेम भक्ति की बात है या प्रेम भक्ति, ये भक्ति का स्तर है, ये भक्ति करने का मार्ग नहीं है, ये भक्ति का स्तर है। अर्थात भक्ति करते हुए हम प्रेम भक्ति के स्तर तक उठना चाहते हैं, तो प्रेम भक्ति ये भक्ति का स्तर है, भाव भक्ति ये भक्ति का स्तर है, साधना भक्ति ये भक्ति का स्तर है। तो शास्त्रों में अलग अलग भक्तियां दी गई हैं, एक स्तर से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऊंचे स्तर तक उठने के लिए बस। लेकिन भक्ति का मूल अर्थ यही है कि एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, ये भक्ति की सबसे सरल परिभाषा है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को, इंद्रियों के जो स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी सेवा में लगाना, लेकिन एक गुरु के आदेशानुसार, मनगढ़ंत कल्पना से नहीं। तो ये भक्ति की साधारण परिभाषा है। और भक्ति में जब हम लगते हैं, पहले स्तर होता है साधना भक्ति, जहां हम अपनी इंद्रियों को कुछ कड़े नियमों के द्वारा प्रयास करते हैं भगवान की ओर लगाने के लिए, तो इसको साधना भक्ति कहते हैं। जब ये साधना भक्ति के भी दो अंग हैं, जैसे वैदी भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो वैदी भक्ति मतलब विधि विधानों का कड़ाई से पालन करते हुए भक्ति करना। अब इसको प्रेमा भक्ति नहीं कहा जाता है, क्योंकि अगर किसी को कहा जाए कि आपको बैठकर 16 माला जप करना है, तो वो कह सकता है मुझे तो कृष्ण से प्रेम है, मैं क्यों 16 माला जप करूं। अभी वो प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, उस प्रेम को उत्पन्न करने के लिए नियम जरूरी है। जब नियम का पालन करते करते हम उस स्तर पर आते हैं जहां नियम आवश्यक नहीं है, तब अलग है। जैसे गोपियां, गोपियों के लिए नियम नहीं है कि वो बैठकर भगवान के नाम का जप करें। क्यों नहीं है? उनका हृदय शुद्ध है, उनके मन में 24 घंटे श्री कृष्ण का स्मरण है। हमें आवश्यकता है, क्यों? क्योंकि हमारा हृदय अशुद्ध है, 24 घंटे क्या 24 सेकंड भी श्री कृष्ण का स्मरण नहीं होता। तो इसीलिए वैदी भक्ति करते हुए व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप को रागानुगा भाव और प्रेमा भक्ति तक उठाता है। तो वो स्तर है, तो उन स्तर तक हमें भक्ति के उठना है। प्रेम भक्ति ये भक्ति का सर्वोच्च स्तर है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी के? हाँ जी, हरे कृष्ण। आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त करें? भगवद गीता में भगवान इस मार्ग को देते हैं। भगवद गीता में सबसे पहले अर्जुन को भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया, आत्म साक्षात्कारी बनाया, और फिर आगे चलकर उस स्तर पर कैसे कार्य करना है उसको समझाया, और अंत में सभी जितने भी धर्म हैं उनको त्याग कर शरण जाने के लिए कहा। तीन चीजें भगवान ने इसमें कही, ज्ञान, फिर भक्ति का मार्ग यानी उस ज्ञान के आधार पर कर्म, और फिर सारे कर्मों को कृष्ण को समर्पण, त्याग। तो आत्म साक्षात्कारी बनने के लिए कुछ चीजें आवश्यक हैं। सबसे पहली चीज, एक प्रामाणिक गुरु की शरण जाना। आत्म साक्षात्कार अपने मन से, अपनी कल्पना से, बिना गुरु के निर्देश हुए या बिना गुरु की कृपा से प्राप्त नहीं होता। जैसे आपको कोई डिग्री चाहिए हो तो आपको कॉलेज जाना होता है, पढ़ाई करनी होती है, एग्जाम देना होता है, तब डिग्री प्राप्त होती है। तो इसी तरह ये जो आत्म साक्षात्कार की डिग्री है, इसको लेने के लिए सबसे पहले एक प्रामाणिक गुरु की शरण जाना होता है, जो शिक्षक है, जो सिखाएगा आपको कैसे चलना है इस मार्ग पर। और जब हम प्रामाणिक गुरु की शरण जाते हैं तो दूसरा कार्य, हमें उनके जो निर्देश हैं उनको अपनी पूरी क्षमता से पूरा करने का प्रयास करना, पालन करने का प्रयास करना, ये दूसरा स्टेप है। आत्म साक्षात्कार ये कोई एक दिन का कार्य नहीं है। आत्म साक्षात्कार ये एक प्रक्रिया है जो धीरे 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 हम उसको प्राप्त करते हैं। आत्म साक्षात्कार पद नहीं है जिसको किसी भी तरह से प्राप्त किया जाए, ये एक प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया को हम धीरे धीरे करते हैं। तो पहली चीज, गुरु को स्वीकार करें। दूसरी चीज, उनके बताए हुए मार्ग को बड़ी कड़ाई से पालन करें, पूरी गंभीरता से, अपना पूरी क्षमता से हम पालन करें। और फिर आगे चलकर हम देखेंगे कि हमारे हृदय से केवल गुरु के निर्देशों को पालन करते हुए हमारे हृदय से जो दूषण हैं, जो ऐसे दोष है हमारे हृदय में, वो साफ हो जाते हैं और फिर हम अपने आप को बड़ा स्पष्ट देख पाते हैं। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है, एक शीशे से तुलना की गई है, दर्पण से। तो आत्म साक्षात्कार क्या है? अपने आप को देखना। तो मान लीजिए एक दर्पण है, आप उसमें अपने आप को देखना चाहते हैं, लेकिन वो दर्पण पूरी धूल से भरा हुआ है, तो आप देख नहीं पाते हैं, आप कहाँ दिखेगा, चेहरा आपका नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप उस धूल को साफ कर देते हैं तो आपका चेहरा उसमें दिखेगा। तो हमारा ये जो मन है ये एक दर्पण के समान है जिस पर इस समय धूल पड़ी हुई है, काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की। तो जब उस धूल को हरिनाम के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा, भगवान के भक्तों की सेवा के द्वारा, उनके मार्ग निर्देशन के द्वारा साफ किया जाता है, तब आप अपने आप को स्पष्ट देख लेते हो। और यही आत्म साक्षात्कार की पहली अवस्था है, ये संपूर्ण नहीं है, पहली अवस्था। तो इसका पालन हमें करना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी के? तो ठीक है, अभी भगवान के दर्शन करेंगे, कीर्तन होगा कुछ ही समय के लिए, और फिर उसके बाद